आप हैं SBS हिंदी के साथ।
सिडनी के नॉर्दर्न बीचेस पर सामने आए कोविड के दो नए मामले। 2015 पेरिस हमलों में 14 आरोपी दोषी करार और एडिलेड में शुरू हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच। अब खबरें विस्तार से। तीन संक्रमणों की खोज के एक दिन बाद ही सिडनी के नॉर्दर्न बीचेस पर कोविड 19 के दो और मामले सामने आ गए हैं। नॉर्दर्न बीचेस पर 7 स्थानों को उन स्थानों के रूप में पहचाना गया है जो संक्रमित आदमी और महिला द्वारा देखे गए थे। स्वास्थ्य मंत्री ब्रेड हैजर्ड ने हल्के लक्षणों के बावजूद भी परीक्षण करवाने की क्षेत्र के लोगों से अपील की।
I would say to everybody on the northern beaches, it is sufficient to say that 4 cases of apparent community transmission at this point would strongly suggest to any of the residents of the northern beaches that you should go and get tested if you have any symptoms at all of cold or flu like illness.
फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्रेडनबर्ग का कहना है कि नए बजट के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों को राहत महसूस करनी चाहिए क्योंकि कोरोना के बाद अब अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ रही है। सरकार का मध्य वर्ष का वित्तीय बजट अपडेट दर्शाता है कि उनका अनुमानित शुद्ध कर्ज 703 मिलियन से घटकर 691 मिलियन होने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर नवंबर में 6.8% तक गिर गई और मार्च तिमाही 2021 में यह 7.5% तक पहुंचने की उम्मीद है। फ्रेडनबर्ग ने कहा कि भविष्य को लेकर बहुत उम्मीदें हैं और देश ने एक लंबा सफर तय किया है।
This improved outlook is off the back of unprecedented levels of economic support. The Morrison government has committed $251 billion in direct economic support. Already over $138 billion has flowed to households and businesses.
पेरिस की एक अदालत ने जनवरी 2015 में घातक हमलों की एक श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए 14 लोगों को दोषी पाया है। आपको बता दें, इन हमलों में 17 लोगों की मौत हुई थी। फैसले के लिए 11 लोगों को अदालत का सामना करना पड़ा जबकि 3 को अनुपस्थिति में फैसला सुनाया गया। मुख्य आरोपी अली रजा को आतंकवादी अपराध में जटिलता का दोषी पाया गया और उसे 30 साल की जेल की भी सजा हुई। यहूदी सुपरमार्केट में हमले के दौरान लोगों की जान बचाने वाले लेजन बेथली ने फैसले पर राहत व्यक्त की।
Voilà, pour nous, c'est une nouvelle page qui tourne. Voilà, j'espère que on va trouver une nouvelle vie. Pendant 6 ans, on n'était pas bien.
For us, this is a new page that is turning. I hope we are going to find new lives.
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि चीन के साथ संबंध दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं और तनाव बढ़ाना दोनों मुल्कों के लिए हानिकारक है। स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उन्होंने आखिरी बार 18 महीने पहले जापान के G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की थी, लेकिन वो मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ऑस्ट्रेलियाई निर्यात पर व्यापार प्रतिबंध और शुल्क लागू कर रहा है और ऐसे में चीनी मंत्री ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों से बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया अपने हित में काम करना जारी रखेगा क्योंकि वह विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से जौ पर चीन के प्रतिबंधों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।
And we've made the decision to take the barley issue forward and considering other matters at the moment. But it's important that we understand that this relationship is not a one-way relationship.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि क्रिसमस के दौरान कोविड 19 नियमों में बदलाव नहीं होगा और उन्होंने लोगों से उत्सव को छोटा रखने का अनुरोध किया। प्रतिबंधों में छूट देते हुए 23 से 27 दिसंबर तक पूरे ब्रिटेन में 3 परिवार आपस में मिल सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इससे ज्यादा इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता और एक छोटा क्रिसमस सभी के लिए सुरक्षित होगा।
Have yourselves a merry little Christmas. I'm afraid this year I do mean little, but with the vaccine and all the other measures that we're taking, I'm sure that next year Christmas will be as normal as usual for every family in the country.
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीते जो बाइडेन ने पीट बुटिगिग को परिवहन विभाग का नेतृत्व करने की घोषणा की है। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो पीट बुटिगिग सेनेट द्वारा एक कैबिनेट पद के लिए खुले तौर पर चुने गए पहले समलैंगिक व्यक्ति होंगे। पीट बुटिगिग ने अपने स्वीकृत भाषण के दौरान भी इस बात को स्वीकारा।
The eyes of history are on this appointment, knowing that this is the first time an American president has ever sent an openly LGBTQ cabinet member to the Senate for confirmation.
अब खबरें भारत से। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों में से एक करनाल के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। सिंधु बॉर्डर पर आत्महत्या करने वाले किसान ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक करनाल से आए संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। उन्होंने सुसाइड नोट में चल रहे किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रवैये को लेकर बात कही है।
एक्चुअली ये जो हम यहाँ रहते हैं गोवंडी स्लम एरिया है, उन्होंने
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 26,382 नए केस सामने आए हैं। वहीं 387 लोगों की मौत हुई है। नए केस दर्ज होने के बाद भारत में कोरोना के कुल 99,32,548 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें इस बीमारी से ठीक हो चुके लोगों मरीजों की संख्या भी 94,56,000 के पार हो चुकी है। मुंबई के पूर्व उपनगरीय क्षेत्र गवंडी स्लम के 6 छात्रों ने इस साल नीट परीक्षा पास कर ली है। नीट क्वालिफायर में से एक जैबा खान ने बातचीत में बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा करना वो बचपन से चाहती थी और उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि डॉक्टरों की कमी के बाद उनका निश्चय और दृढ़ हो गया।
एक्चुअली ये जो हम यहाँ रहते हैं गोवंडी स्लम्स एरिया है, उन्होंने बताया रोज़ रोज़ की हालतें न्यूज़पेपर ऐसे हो रहे हैं। अभी कोविड के टाइम पे ही डॉक्टर्स की कितनी कमी पड़ गई थी, अलग अलग तरीके से लोग बिना ट्रीटमेंट के सबकी डेथ हो रही थी। उस वजह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही कि ये करना ही है।
अब डालते हैं डॉलर पर नज़र। आज यानी गुरुवार को एक खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.80 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 76 सेंट थी। अब खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच आज एडिलेड में शुरू हो गया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। हालांकि ओपनर पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटके के बाद चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल ने भारतीय पारी को संभाला। आपको बता दें कि भारतीय प्लेइंग 11 में केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल को जगह नहीं मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरन ग्रीन टेस्ट में डेब्यू कर रहे हैं। टेनिस में पुरुषों की प्रोफेशनल गवर्निंग बॉडी ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल मेलबर्न में 8 फरवरी से शुरू होगा। ATP ने समय से 3 हफ्ते बाद ग्रैंड स्लैम शुरू करने की बात कही, लेकिन विक्टोरियन सरकार अभी भी तारीख की पुष्टि नहीं कर पाई है। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी का अवसर देने के लिए कई अन्य कार्यक्रमों को मेलबर्न में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब डालते हैं मौसम पर हाल। बात करते हैं कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां पूरे दिन धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बादल अब हटने लगे हैं। तापमान रहेगा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न की सुबह होगी हल्की बारिश के साथ। अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहां बारिश के साथ तूफान की संभावना रहेगी। यहां के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, तो यहां भी मौसम कुछ वैसा ही रहेगा। इसका मतलब बारिश के साथ तूफान की संभावना रहेगी। तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में दिन में एक दो बार गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला बरकरार है। यहाँ का तापमान रहेगा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहाँ का तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।